एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमारे चारों ओर मौजूद दुनिया के रहस्यों को खोलेगा।
हाँ, मतलब हम अपनी दुनिया की सबसे साधारण चीजों को, जैसे एक कांच का ग्लास या स्टील का चम्मच, एक काल्पनिक माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे
और तब तक जूम इन करते जाएंगे जब तक हम उन अदृश्य परमाणुओं तक न पहुंच जाएं जो इन्हें बनाते हैं।
क्या बात है, मतलब हम उस दुनिया में जा रहे हैं जो हमें आंखों से तो नहीं दिखती पर हमारी पूरी हकीकत को बनाती है।
आज हम बात करेंगे पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस की,
और हमारे गाइड होंगे क्रिस्टोफर हॉल, जिनकी किताबों से हमने ये सारी जानकारी जुटाई है।
और ये विषय सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है।
बिल्कुल नहीं, यह आज इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि भविष्य की बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, बेहतर मेडिकल डिवाइस हो
या मंगल ग्रह तक जाने वाले स्पेसशिप,
हाँ, इन सब का जवाब एक ही जगह छिपा है, नए और बेहतर मटेरियल्स बनाने की हमारी क्षमता में।
तो चलिए इस अदृश्य दुनिया के नियम कानून समझते हैं।
तो हमारे गाइड क्रिस्टोफर हॉल, वो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में मटेरियल साइंस के प्रोफेसर एमेरिटस हैं।
पर उनकी सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है, उनकी खासियत ये है कि वो इस विषय को केमिस्ट्री के नजरिए से देखते हैं। मतलब वो सतह पर नहीं रहते,
वो सीधे चीजों के दिल में उतरते हैं, परमाणु या एटम के स्तर पर।
सही कहा। और दूसरी मजेदार बात यह है कि उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन सीमेंट, कॉन्क्रीट और पत्थरों जैसे बोरिंग समझे जाने वाले पदार्थों पर शोध करते हुए बिताया।
मतलब वो सिर्फ थ्योरी नहीं जानते बल्कि उन्हें ये भी पता है कि असल दुनिया में हमारे घर, पुल और सड़कें कैसे बनती और टिकी रहती हैं। बिल्कुल, और यही चीज उन्हें बेहतरीन कहानीकार बनाती है जो जटिल विज्ञान को भी बहुत आसान भाषा में समझा सकते हैं।
तो हॉल की किताबों का जो केंद्रीय विचार है वो एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे संरचना गुण संबंध कहते हैं।
सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना?
हाँ, थोड़ा सा,
पर इसका मतलब बहुत आसान है। किसी भी चीज का गुण, वो मजबूत होगी या कमजोर, पारदर्शी होगी या कुछ और, ये सब कुछ इस एक बात पर निर्भर करता है
कि उसके अंदर के परमाणु कैसे जुड़े और व्यवस्थित हैं।
बिल्कुल, ये एक तरह का सीक्रेट कोड है। अगर आप ये कोड समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हीरा इतना कठोर क्यों है
और उसी कार्बन से बना ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है वो इतना नरम क्यों है।
हाँ, तो हॉल की किताबें हमें यही कोड डीकोड करना सिखाती हैं। वो हमें परमाणुओं की अदृश्य दुनिया से लेकर उन बड़ी चीजों तक का सफर कराती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं।
संक्षेप में कहें तो हॉल का तर्क है कि मानव सभ्यता का पूरा इतिहास असल में मटेरियल्स को समझने और इस्तेमाल करने का इतिहास है।
पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग
और आज का सिलिकॉन युग, हर युग को एक मटेरियल ने परिभाषित किया है और आज हम एक नई पदार्थ क्रांति के बीच में जी रहे हैं।
तो चलिए इस कोड को तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली और बुनियादी चीज है परमाणु और उनके बीच के बंधन, यानी एटम्स एंड बॉन्ड्स।
हॉल बताते हैं कि परमाणुओं के बीच का रिश्ता कैसा है, यही तय करता है कि पूरा पदार्थ कैसा व्यवहार करेगा।
जैसे हमारे खाने का नमक, उसमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं।
सही।
यहाँ एक परमाणु दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है जिससे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बनते हैं और वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं।
ये बंधन बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए नमक का क्रिस्टल कठोर होता है। लेकिन
ये भंगुर भी होते हैं, ब्रिटल। जरा सा झटका लगा और ये रिश्ता टूट जाता है, इसीलिए नमक जमीन पर गिरते ही बिखर जाता है।
अच्छा, और दूसरा होता है
कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड, जहां परमाणु इलेक्ट्रॉन दान नहीं करते बल्कि साझा करते हैं। ये एक मजबूत पार्टनरशिप की तरह है
और ये बहुत मजबूत और दिशात्मक होता है, मतलब एक खास एंगल पर ही बनता है।
इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हीरा। हीरे में हर कार्बन परमाणु चार और कार्बन परमाणुओं से इसी बंधन से जुड़कर एक 3D जाल बनाता है जो उसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बनाता है।
और तीसरा है धात्विक बंधन, मेटालिक बॉन्ड, जो सिर्फ धातुओं में पाया जाता है। ये सबसे अनोखा है।
हाँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के नहीं होते बल्कि वो सभी परमाणुओं के बीच बने एक समुद्र में आजादी से तैरते रहते हैं।
एक मिनट, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक है, इसका असल में मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एक के प्रति वफादार नहीं है, वो पूरे मेटल स्ट्रक्चर में कहीं भी घूम सकते हैं।
अच्छा,
और यही इलेक्ट्रॉन का समुद्र धातुओं को उनके जादुई गुण देता है। जब हम लोहे पर हथौड़ा मारते हैं तो परमाणु अपनी जगह से खिसक तो जाते हैं, लेकिन वो इस समुद्र की वजह से एक दूसरे से अलग नहीं होते।
इसीलिए धातु टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है या चादर की तरह फैल जाती है।
बिल्कुल, और इन्हीं आजाद इलेक्ट्रॉनों की वजह से धातुएं बिजली और गर्मी की इतनी अच्छी सुचालक होती हैं।
वाह, तो ये बंधन तो हो गए जैसे ईंटों को जोड़ने वाला मसाला। लेकिन सिर्फ मसाला ही काफी नहीं है, है ना?
सही,
ये भी जरूरी है कि ईंटें लगी कैसे हैं, एक सीधी दीवार में या एक बेतरतीब ढेर की तरह।
और यहीं पर व्यवस्था और अव्यवस्था, मतलब ऑर्डर एंड डिसऑर्डर का खेल शुरू होता है।
बिल्कुल सही पकड़ा। जब परमाणु एक बहुत ही व्यवस्थित दोहराए जाने वाले पैटर्न में होते हैं तो उसे क्रिस्टल ये कहते हैं, क्रिस्टलाइन।
जैसे चीनी का दाना या क्वार्ट्ज का पत्थर, आप उसे किसी भी एंगल से देखें, आपको एक जैसा पैटर्न दिखेगा।
और जब परमाणुओं में कोई लंबी दूरी का क्रम नहीं होता, वो बेतरतीब ढंग से जमे होते हैं, तो उसे अनाकार या अमॉर्फस कहते हैं।
जैसे खिड़की का कांच। और यहाँ एक बात है जो दिमाग घुमा देती है।
क्या?
क्वार्ट्ज का पत्थर और खिड़की का कांच दोनों एक ही चीज से बने हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
क्या बात कर रही हैं? मतलब एक ही चीज से हम एक कठोर अपारदर्शी पत्थर भी बना सकते हैं और एक भंगूर पारदर्शी कांच भी?
हाँ,
सिर्फ इस आधार पर कि उसके परमाणु सलीके से बैठे हैं या अस्त व्यस्त हैं।
बिल्कुल, यही तो विज्ञान का जादू है। जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है तो परमाणुओं को लाइन में लगने का समय मिल जाता है और वो क्रिस्टल यानी क्वार्ट्ज बना लेते हैं।
और अगर हम उसे बहुत तेजी से ठंडा कर दें
तो परमाणुओं को जहां है वहीं जमना पड़ता है और हमें मिलता है कांच। तो सिर्फ व्यवस्था का फर्क उन्हें इतना अलग बना देता है।
एक बात जो इस किताब में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो हमारे रोजमर्रा के सोच के बिल्कुल उल्टी है। हम हमेशा परफेक्शन या त्रुटिहीनता के पीछे भागते हैं ना? लेकिन हॉल कहते हैं कि पदार्थों की दुनिया में परफेक्शन असल में एक कमजोरी है।
सही,
जो चीजें हम मजबूत समझते हैं जैसे स्टील, वो अपनी अपूर्णता, अपने डिफेक्ट्स की वजह से ही मजबूत हैं।
एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब हम किसी चीज में मिलावट कर रहे हैं, उसे अशुद्ध कर रहे हैं और वो बेहतर हो रही है।
हाँ हाँ बिल्कुल,
ये तो ऐसा हुआ है जैसे दूध में थोड़ा पानी मिलाने से वो ज्यादा पौष्टिक हो जाए।
बिल्कुल सही एनालॉजी, लेकिन यहाँ मिलावट बहुत सोची समझी इंजीनियरिंग है।
अच्छा, कैसे?
इसे ऐसे समझें, धातुओं में परमाणुओं की परतें होती हैं। अगर ये परतें एकदम परफेक्ट होंगी तो जरा सा जोर लगाने पर एक साथ फिसल जाएंगी और धातु टूट जाएगी।
ठीक है,
लेकिन धातुओं में प्राकृतिक रूप से डिसलोकेशंस नाम की खामियां होती हैं, मतलब परमाणुओं की लाइनों में कुछ गड़बड़। जब हम धातु को मोड़ते हैं तो ये परतें एक एक करके इन डिसलोकेशंस के सहारे खिसकती हैं।
अच्छा, तो ये खामियां एक तरह से स्लिप होने के लिए जगह देती हैं। लेकिन फिर स्टील ज्यादा मजबूत कैसे हुआ?
यही तो असली खेल है। शुद्ध लोहा काफी नरम होता है क्योंकि उसमें ये डिसलोकेशंस आसानी से खिसक जाती हैं। लेकिन जब हम उसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं तो कार्बन के छोटे परमाणु लोहे के परमाणुओं के बीच की खाली जगह में जाकर फंस जाते हैं,
एक स्पीड ब्रेकर की तरह।
बिल्कुल, वो उन डिसलोकेशंस को आसानी से खिसकने से रोकते हैं। अब उन परतों को खिसकाने के लिए हमें कहीं ज्यादा जोर लगाना पड़ता है
और नतीजो
हमें मिलता है स्टील, जो लोहे से सैकड़ों गुना ज्यादा मजबूत होता है।
तो यहाँ हमने जानबूझकर एक अपूर्णता पैदा की ताकि पदार्थ मजबूत बन सके।
वाह, कंट्रोल्ड इम्परफेक्शंस।
तो इन्हीं तीन सिद्धांतों, बंधन, व्यवस्था और अपूर्णता के आधार पर हम अपने आसपास की लगभग हर चीज को समझ सकते हैं।
जैसे हमारे किचन में मौजूद पदार्थों के तीन मुख्य परिवार,
धातु, सिरेमिक और पॉलीमर।
बिल्कुल, चलो एक आदर्श खाना बनाने का पैन डिजाइन करते हैं। पैन का निचला हिस्सा जो आग के ऊपर रहेगा वो धातु का होना चाहिए,
जैसे एल्यूमिनियम या तांबा, क्योंकि उनके धात्विक बंधन गर्मी को तेजी से और बराबर फैलाते हैं।
सही है, और मान लो हमें उस पर नॉनस्टिक कोटिंग चाहिए।
वो एक तरह का सिरेमिक या खास पॉलीमर हो सकता है जो बहुत ज्यादा तापमान सह सके और रासायनिक रूप से स्थिर हो।
लेकिन सिरेमिक प्लेट की तरह भंगुर होता है, इसलिए हम पूरा पैन सिरेमिक का नहीं बना सकते।
और अंत में हैंडल, हैंडल जरूर एक पॉलीमर यानी प्लास्टिक का होना चाहिए,
क्योंकि पॉलीमर की लंबी लंबी कार्बन चेन गर्मी की कुचालक होती हैं और वो हल्का भी होता है।
तो एक ही पैन में हमने तीनों परिवारों के बेहतरीन गुणों का इस्तेमाल कर लिया और अब तो हम एक नए युग में हैं,
जिसे हॉल डिजाइन द्वारा पदार्थ का युग कहते हैं।
हाँ, अब हम सिर्फ प्रकृति में मिलने वाली चीजों पर निर्भर नहीं हैं। हम एटम और मॉलिक्यूल को ईंट की तरह इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल नए पदार्थ बना रहे हैं।
कार्बन फाइबर इसका बेहतरीन उदाहरण है। स्टील से 5 गुना मजबूत, लेकिन वजन में उससे बहुत हल्का।
इन सभी विचारों से कुछ बहुत बड़े संदेश निकल कर आते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, संरचना ही कार्य को निर्धारित करती है। स्ट्रक्चर डिटरमिन्स फंक्शन।
ये एक सार्वभौमिक नियम है। हिया और ग्रेफाइट दोनों शुद्ध कार्बन है,
लेकिन एक में परमाणुओं की 3D संरचना है और दूसरे में 2D परतें। बस इसी फर्क ने एक को दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बना दिया और दूसरे को इतना नरम कि वो कागज पर निशान छोड़ सके।
दूसरा बड़ा विषय है, पदार्थ सभ्यता को चलाते हैं। मटीरियल्स ड्राइव सिविलाइजेशन।
हम इतिहास को युगों में बांटते हैं, पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग।
और आज हम सिलिकॉन युग में जी रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से क्रिस्टल सिलिकॉन ने पूरी डिजिटल क्रांति को संभव बनाया।
यह हमें याद दिलाता है कि मानव प्रगति के केंद्र में हमेशा कोई ना कोई मटेरियल रहा है।
तीसरा और मेरा पसंदीदा ये है कि विफलता को समझना सफलता की कुंजी है।
अच्छा।
हाँ, वैज्ञानिक ये अध्ययन करके बेहतर चीजें डिजाइन करते हैं कि पदार्थ कैसे टूटते, जंग खाते या खराब होते हैं। टकोमा नैरो ब्रिज का ढहना इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है।
ओ हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। 1940 में अमेरिका में बना ये पुल सिर्फ हल्की हवा में ही ताश के पत्तों की तरह हिलने लगा और ढह गया।
ये तो बहुत बड़ी विफलता थी।
हाँ, लेकिन इस विफलता ने इंजीनियरों को रेजोनेंस और एरोडायनेमिक्स के बारे में वो सबक सिखाए जो वे कभी नहीं भूल सकते थे।
मतलब आज जो हम इतने लंबे और सुरक्षित पुल देखते हैं, वो कहीं ना कहीं टकोमा ब्रिज की विफलता के देन है।
बिल्कुल, विफलता का अध्ययन हमें बताता है कि अगली बार क्या नहीं करना है।
और अंत में आज के समय का सबसे जरूरी संदेश, स्थिरता की अनिवार्यता।
बिल्कुल, आज पदार्थ विज्ञान का सबसे बड़ा लक्ष्य ऐसे पदार्थ बनाना है जो पर्यावरण के अनुकूल हों, जिन्हें आसानी से रिसाइकल किया जा सके
और जो हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करें। जब हम भारत में बेहतर बैटरी और ज्यादा कुशल सोलर सेल की बात करते हैं, तो हम असल में पदार्थ विज्ञान की ही बात कर रहे होते हैं।
सही कहा।
हॉल की किताबों में ऐसे कई विचार हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कि ये विचार, पदार्थों की दुनिया में कामयाब विफलता नहीं है, वे विशेषताएं हैं।
ये हमारे परफेक्ट होने के जुनून को पूरी तरह चुनौती देता है।
बिल्कुल, ये सिखाता है कि कभी कभी नियंत्रित इम्परफेक्शन ही असली ताकत होती है।
एक और शक्तिशाली विचार है, हम पदार्थ खोजने के युग से उन्हें डिजाइन करने के युग में आ गए हैं।
ये कितना बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि अब हम सिर्फ प्रकृति के रहमो करम पर नहीं हैं।
हम अपने रचनात्मकता और विज्ञान की समझ का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं के समाधान खुद बना रहे हैं। हम अब प्रकृति के छात्र ही नहीं, उसके साथ सह निर्माता भी बन गए हैं।
और ये भी बहुत गहरा है, परमाणु स्तर पर कुछ भी कचरा नहीं है।
बस ऐसे परमाणु हैं जो कुछ उपयोगी चीज में पुनर्व्यवस्थित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ये रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी के पीछे के विज्ञान को कितनी खूबसूरती से बताता है ना।
हाँ, ये हमें कचरे को एक समस्या के बजाय एक संसाधन के रूप में देखने की प्रेरणा देता है।
और ये सारा ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह है।
जैसे बिल्डिंग बनते समय कॉन्क्रीट के खम्भों में स्टील की छड़ें यानी सरिया इस्तेमाल होता है।
हाँ, हम सबने देखा है।
कॉन्क्रीट दबाव बहुत अच्छी तरह सह सकता है, लेकिन खिंचाव में कमजोर होता है, और स्टील खिंचाव बहुत अच्छी तरह सहता है।
तो दोनों को मिलाकर एक ऐसा कंपोजिट पदार्थ बनता है जो दोनों तरह के बलों का सामना कर सके।
या फिर गर्मियों में इस्तेमाल होने वाला मिट्टी का घड़ा।
अरे वाह। हाँ,
मुझे याद है बचपन में जब घड़ा टूट जाता था तो लगता था कि अब ये किसी काम का नहीं, लेकिन अब समझ आता है कि उसके काम करने के पीछे भी पदार्थ विज्ञान था।
वो एक छिद्रपूर्ण मतलब पोरस सिरेमिक है।
हाँ,
उसकी दीवारों में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता है। जब ये पानी सतह पर आकर हवा में उड़ता है तो वो अंदर के पानी से गर्मी खींच लेता है
और पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा हो जाता है। ये हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग है।
बिल्कुल, और आज के भारत के संदर्भ में देखें तो इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा पर इतना जोर है। इन दोनों का भविष्य सीधे तौर पर बेहतर बैटरी बनाने वाले पदार्थों पर निर्भर करता है। ऐसी बैटरी जो ज्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकें, मिनटों में चार्ज हों और सुरक्षित हों।
और ज्यादा कुशल सोलर पैनल भी। हाँ, ऐसे सोलर पैनल्स जो कम रोशनी और बादल वाले मौसम में भी ज्यादा बिजली बना सकें। ये सब कुछ पदार्थ विज्ञान की प्रयोगशालाओं में ही संभव होगा।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारे आसपास की दुनिया मनमानी नहीं है, उसके पीछे गहरे वैज्ञानिक कारण हैं जो उसकी अदृश्य आणविक संरचना में छिपे हैं, और नियंत्रित अपूर्णता का विचार कि हम जानबूझकर खामियां पैदा करके चीजों को बेहतर और मजबूत बनाते हैं, ये सिर्फ विज्ञान ही नहीं जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है।
सही बात है, कभी कभी हमारी कथित कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं।
और आपके लिए?
मेरे लिए इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बहुत मायने रखता है। मानव इतिहास को पदार्थों के विकास की कहानी के रूप में देखना, पाषाण, कांस्य, लौह, सिलिकॉन,
यह हमें याद दिलाता है कि हम एक असाधारण तकनीकी दौर में जी रहे हैं।
हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि अगला युग किस पदार्थ का होगा। क्या वो ग्रेफीन का युग होगा या शायद ऐसे बायोमटेरियल्स का जो खुद को ठीक कर सकते हैं।
भविष्य की दिशा पदार्थ विज्ञान ही तय करेगा, और ये सोचना ही रोमांचक है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।